ओम शांति। आनंद आ रहा है, रस पी के भी आनंद आया, गन्ने का मीठा था फीका, मीठा सबको अच्छा लगता है ना, फीका हो तो जीवन भी जितना मीठा होगा अपने को भी प्रिय लगेगा और दूसरों को भी। मिठास से भरा हुआ जीवन सुखी जीवन होता है। कर्मों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मैं एक और बात आपके ख्यालों में उतार देना चाहता हूं। जीवन का ये सफर बहुत सुंदर सफर है, इसे सुख भरा बनाना। यात्रा करते हैं आप, वहां से ओडिशा से यहाँ आए, यात्रा में किसी को कठिनाई हो जाती है, किसी को भोजन नहीं मिलता, किसी के पास सामान ज्यादा हो, किसी का सामान चोरी हो जाए, कई दिक्कतें हैं ना, कहीं सामान उठाना पड़ जाए। लेकिन जीवन का ये सफर हमें बहुत सुखदायी बनाना है, जिसमें सुख भी हो, क्या क्या हो, शांति भी हो, खुशी बहुत हो, प्रेम बहुत हो, और एक चीज और, नहीं वो आप नहीं सोच रहे हैं, कदम कदम पर सफलता मिले। सफलता सब चाहते हैं ना, चाहे छोटा काम हो या बड़ा हो, बिजनेस हो या नौकरी, हर कदम पे मनुष्य को सफलता मिले, ये उसके जीवन की बहुत बड़ी सफलता होती है, भाग्य की सफलता होती है। भाग्य का सितारा चमकता है तो कदम कदम पे सफलता द्वार पर आने लगती है। तो ऐसा जीवन हमें बनाना है। विचार करें, परिवारों में प्यार भरा जीवन हो, हर एक क्या सोचे, बोलो आपके परिवार में प्यार भरा परिवार हो, जीवन हो, क्या सोचे आप, नहीं और कुछ। स्वर्ग तो वो परिवार होगा ही, लेकिन आपको सोचना ये है, मुझे सबको प्यार देना है। लेना तो सब चाहते हैं, हम क्या बन जाएं, देने वाले। बोलो है प्यार है जो दे सकें, या खुद ही प्यासे हैं कोई हमें दे, देंगे तो मिलेगा। इसलिए ये कला सीखनी है, परिवारों में प्यार का माहौल हो जाए। इसलिए इसके लिए एक दो की बुराई नहीं चित्त पे रखेंगे। बुराई चित्त पे आती है, ये ऐसी है, ये ऐसा है, तो प्यार खत्म हो जाता है ना, ठीक बात। खुशी भी आपके परिवार में बहुत रहे, जहां खुशी है वहां भोजन न भी होना तो मनुष्य को फील नहीं होगा कि भोजन नहीं मिला, खुशी बहुत है। खुशी के लिए बहुत बातें हैं, लेकिन मैं आपको एक बात अंडरलाइन करा देना चाहता हूं, पास्ट को पूरी तरह भूल जाएं। सहज काम नहीं होता कभी कभी, लेकिन जो कुछ हो गया, जो दूसरों ने कर दिया, उसको भुला के आगे बढ़ना है। क्या होता है परिवारों में, इसने ये किया था, वो याद दिलाते हैं बार बार, तुम हो ही ऐसी, स्टैंप भी लगा देते हैं, चाहे वो सुधर गई हो, लेकिन हम क्या स्टैंप लगा देते हैं, तुम, बोलो जरा याद रहेगा, तुम हो ही ऐसा, वो सुधर भी गया हो लेकिन हम स्टैंप लगा देना चाहते हैं तुम सुधरोगे नहीं। पास्ट की बातों को भुला देंगे तो प्यार भी बहुत रहेगा, खुशी भी बहुत रहेगी। हमारी दृष्टि दूसरों के लिए ऐसी न बन गई हो, ये तो ऐसे ही हैं, या ये तो बदलेंगे नहीं, ये तो सुधरेंगे नहीं। तो प्रेम और खुशी का माहौल सभी को अपने अपने घरों में बनाना है। भाई बनाएंगे या बहने? दोनों, एक से तो काम चलेगा नहीं। फिर भी मैं विशेष कहता हूं, ये जिम्मेदारी मातृशक्ति की ज्यादा है। स्वीकार है आपको? देखो भाइयों ने ताली बजाई। क्यों भाई, आपकी जिम्मेदारी उतार दी आपने? माताएं करेंगी? नहीं, मातृशक्ति में वो पावर है, इसलिए बाबा ने यहां भी देखो बहनों को आगे कर दिया। मातृशक्ति में पावर है, वो अपने घर में अपने स्थान पर वातावरण को बहुत सुख भरा, खुशियों भरा, प्रेम भरा बना सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, जीवन के इस सफर में ये सदा याद रखना है, जीवन के इस सफर में सुख दुख हार जीत मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय सब होंगी। होंगी या नहीं? या सदा ही जीत होती रहेगी? हार कभी नहीं होगी। चाहता तो मनुष्य जीत है, चाहता तो मनुष्य लाभ है, चाहता तो मनुष्य प्रशंसा है, लेकिन इसका उल्टा भी होता है। होता है या नहीं? स्वीकार कर लो, दोनों होंगे। अपोजिट पेयर्स हैं ये, दोनों होंगे। जैसे कोई हमारी प्रशंसा करता है, अप्रिशिएट करता है, हम बहुत खुश होते हैं, और निंदा करता है तो क्या होता है बताओ? जो प्रशंसा सुन के बहुत फूल जाए, ज्यादा फूल जाए थोड़ा, वो निंदा सुन के जमीन पर आ जाता है, और जो प्रशंसा सुनकर क्या सोचे, ये सोच आपको साथ रखना है, ये सफलता, ये महिमा, ये मान, ये सम्मान मुझे शिव बाबा ने दिलाया। तो नीचे ही रहेंगे जरा, नहीं तो कभी कभी जीत मनुष्य के अभिमान को बढ़ा देती है, बहुत प्रशंसा उसको जरा ज्यादा ऊंचा उठा देती है, फिर गिर जाता है वो व्यक्ति, दूसरों से अच्छी बातें नहीं करता, अभिमान अहंकार बहुत बढ़ जाता है। सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं। देखो इस संसार के खेल को आप देखो, सर्दी भी आती है तो गर्मी भी, और बरसात भी तो बसंत ऋतु भी, सब आते हैं ना, एक तो नहीं रहता, परिवर्तनशील है सब कुछ। इस सृष्टि में एक बहुत सुंदर खेल चल रहा है, हर चीज एक साइक्लिक ऑर्डर में घूम रही है, दिन रात भी रोज रिपीट हो रहे हैं ना, ऋतुएं भी साल भी, ऐसे ही 5000 साल का खेल भी। और अगर आप में से कोई पढ़े लिखे केमिस्ट्री पढ़ी हो तो एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी घूम रहे हैं, एक सर्किल में घूमते रहते हैं सब, ये ग्रह सब घूम रहे हैं, कुछ भी स्थिर नहीं होता, घूम रहे हैं इसलिए हमें स्थिर दिखाई देते हैं। धरती घूम रही है या नहीं? हमें स्थिर दिखती है। चांद भी घूम रहा है, धरती सूरज के चारों ओर भी घूम रही है, हमें सूरज भी स्थिर दिखता है तो चांद घूमता हुआ थोड़ा थोड़ा नजर आता है। सब घूम रहे हैं, हम स्वीकार कर लें जीवन के सफर में सुख दुख हार जीत मान अपमान सर्दी गर्मी ये सब होगा ही। स्वीकार करो, जितना स्वीकार करेंगे उतना शांत रहेंगे। एक चीज पर किसी का अधिकार नहीं है संसार में, कौन सी है वो? हटके है थोड़ी, जो मैंने अब तक बात की उसे हट करें, मृत्यु। मृत्यु पर किसी का अधिकार नहीं है, या है? बोलो आपका क्या विचार है? नहीं है। अच्छे अच्छे लोग आजकल ये खेल प्रारंभ हो गया है, अचानक मृत्यु, अभी अभी मनुष्य है, अभी अभी नहीं है, साइलेंट हार्ट अटैक कह रहे हैं उसे डॉक्टर, साइलेंट हार्ट अटैक बहुत होने लगे हैं, लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, होंगे भी, अभी तो फादर थे अभी नहीं है, बच्चे छोटे हैं। इसलिए जीवन में आज एक सुंदर धारणा अपने साथ सीख लें और लेकर जाएंगे, जिन चीजों को हम बदल नहीं सकते, जिन चीजों पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, उन्हें स्वीकार कर लें, आगे बढ़ें, पीछे नहीं देखेंगे। जो पीछे देखते हैं बार बार वो तेज नहीं चल पाते जीवन में, जो बार बार पीछे देखते हैं वो मंजिल को नहीं छू सकते, उनके कदम रुक जाते हैं बार बार। इसलिए जीवन में सुख चाहिए, खुशी, प्रेम, आनंद, तो स्वीकार करना उसके लिए बहुत आवश्यक है। आजकल देखो कितनी चीजें अचानक आ रही हैं। डॉक्टर जो आप में से बैठे हैं, केस आते होंगे, अचानक व्यक्ति आता है, इसको तो कैंसर है भाई, पता ही नहीं चलता पहले कैंसर है, अभी अभी अर्ली स्टेज का पता चल रहा, नहीं तो पता ही नहीं चलता था, जब तीसरी चौथी स्टेज में पहुंच जाता था तब पता चलता था, तब तक मनुष्य का खेल बिगड़ चुका होता था। स्वीकार करना, अच्छाइयों को भी स्वीकार करना, और जिन चीजों पे हमारा अधिकार नहीं है उन्हें भी स्वीकार करना, आगे का मार्ग देखना, नया मार्ग ढूंढ लेना। एक दरवाजा बंद है, दूसरा खुला होगा। अगर मनुष्य आपका एक दरवाजा बंद कर दे तो शिव बाबा ने दूसरा खोल के रखा है, आप परेशान न हो जाओ इसने क्यों द्वार बंद कर दिया, समझ रहे ना भाषा? आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके मार्ग में बाधा डाल दी, आपकी ग्लानी करने लगे, आपको रोक दिया आगे बढ़ने से, आप घबराओ नहीं, समझ लो वो मार्ग हमारा नहीं था, इधर वाला है, इधर वाले मार्ग से हम फास्ट चलेंगे। और याद रखना, जो मनुष्य हार नहीं मानता उसे कोई हरा नहीं सकता, मनुष्य स्वयं में हारता है तब कोई दूसरा उसे हराता है। कर लो विचार, जीवन में बहुत कुछ आएगा आता है, हार नहीं माननी है, निगेटिव नहीं होना है, निराश नहीं होना है, कमजोर नहीं पड़ना है। कौन हमारा साथी है? अभी क्या गीत सुना था शुरू में? ईश्वर अपने साथ है, बस वो साथ है तो उसकी शक्तियां साथ हैं, निराश नहीं होना है। आज हार हुई है कल जीत होगी, आज लॉस हुआ है कल प्रॉफिट हो जाएगा, आज ग्लानि हुई है, कल प्रशंसा हो जाएगी, आज हम थोड़े पीछे हटे हैं, कल से तेज दौड़ेंगे। ये बात पक्की कर लेना यहाँ। भगवान हमारा गीत है हमारे यहाँ, उसको देख लेना, याद कर लेना थोड़ा थोड़ा, और गाया करना रोज। भगवान हमारा साथी है, पूरा गीत है वो। और दूसरा गीत ये है जो अभी बजा था, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ये ईश्वरीय नशे हैं, इसको खुमारी कहते हैं। ये नशा हमारी शक्तियों को बढ़ा देता है, हमें बलवान बना देता है। तीसरी बात भी, अपने चित्त को सभी को शांत करना है, बहुत बड़ी चीज है। कलयुग में, ये कलयुग का अंत आ पहुंचा है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अभी खेल बिगड़ता जाता है, 25 से खेल बहुत बिगड़ जाएगा संसार का। हम सभी चित्त को शांत करेंगे, ज्ञान चाहिए इसके लिए बहुत बड़ा। अभी आपने ज्ञान लेना शुरू किया है, और ज्ञान ले लेना, और चित्त शांत हो, उलझन में ना आ जाए, परेशानियों में ना आ जाए। जो बहुत आदत होती है छोटी छोटी बात में दुखी हो जाना, छोटी छोटी बात में चिंताओं का शिकार हो जाना, छोटी छोटी बात में बहुत परेशानी फील करने लगना, एकदम हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, एकदम चक्कर आने लगे, इसको समाप्त करना है। भगवान हमारा साथी है। और मैंने आपको पहले दिन एक संकल्प दिया था, वो कभी भूलना नहीं। चिंता करता है मनुष्य, क्या होगा, ये न हो जाए, वो न हो जाए, क्या सोचेंगे? भूल गए आप, फिर से याद कर लो, मेरे साथ सब कुछ, क्योंकि भगवान मेरा साथी है। वो स्वयं मेरा बाप बन गया है, जो भगवान था वो अब क्या हो गया, पिता हो गया, हमारा पापा बन गया, डैडी हो गया। आजकल तो डैडी डैड हो गए हैं, पर वो डैड नहीं होता, वो डैडी है, हमारा पापा है, भगवान नहीं, वो हमारा साथी है। तो हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो, इस एक संकल्प से आप अपनी चिंताओं को मिटाएंगे, परेशानियों से मुक्त रहेंगे। कभी भी विचार आए क्या होगा, इन बच्चों का क्या होगा, माताओं को ये चिंता बहुत होती है, सब कुछ बोलो, सब कुछ रोज बोल लिया करना सवेरे एक बार। जिनके पास डायरी पेन है लिख लो, कुछ लिखाता हूं। सवेरे उठते ही संकल्प करना, लिखो वो संकल्प लिखो, डेली करेंगे तो चार्ज हो जाएंगे आप, नई रोशनी रहेगी जीवन में, हल्कापन होगा, चिंताएं खत्म। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, पहला संकल्प। मैं बहुत भाग्यवान हूं, मेरे साथ स्वयं भगवान है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरा जीवन विघ्नों से मुक्त है, मैं बहुत खुश हूं, मेरे परिवार में सुख शांति प्रेम और खुशी है। ये सब संकल्प करना एक बार, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, पांच बार। आप महसूस करेंगे पहले दिन चार्ज हो गए हम। और अगर आप इन संकल्पों को सच्चे दिल से करके मन को डांस करा दो, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, मन डांस करने लगे आपका, तो क्या होगा? आप सब पढ़े लिखे बैठे हैं, अब ध्यान से समझ लेना। हमारी तरंगें प्रकृति में जाएंगी, ये नियम चल रहा है सृष्टि का। हमारी तरंगें प्रकृति में जाएंगी, प्रकृति में रिएक्शन होगा और वही चीज वापस प्रकृति हमें प्रदान करेगी। आपने संकल्प किया मैं बहुत भाग्यवान हूं, मन डांस करने लगे आपका, हाथ ऊपर उठा के पांच बार बोल देना, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, प्रकृति में रिएक्शन होगा, प्रकृति आपको भाग्य प्रदान करने लगेगी। और कोई उठते ही सोचने लगे मेरी तकदीर ही खराब है, तो और खराब हो जाएगी। उठते ही मैं आपको पहले दिन बता चुका हूं, पहले 10 मिनट कुछ भी ऐसा वैसा सोचना ही नहीं, अखबार भी नहीं पढ़ना। कई लोगों को आदत होती है उठते ही अखबार पढ़ना, गंदगी चली जाएगी सबकॉन्शियस माइंड में और आपको अशांत करेगी, वो बदबू फैला देगी अंदर। कर्मों की गुह्य गति, कर्म तो हम सभी कर रहे हैं, सोचना भी कर्म है, देखना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, हाथों से पांव से जो कुछ हम करते हैं वो भी कर्म है। सतयुग में हम सब कौन थे? पक्का हो गया? फिर से बनेंगे? कौन कौन बनना चाहेंगे? अच्छा, वे तो उड़ीसा में देवता ही देवता होंगे। जो नहीं बनना चाहेंगे वो हाथ उठाना। एक ने उठाया था, फिर फट से नीचे कर लिया, गलती से उठ गया। सतयुग में हम देवी देवता थे, तो कर्म कैसे होंगे? और बोलो कैसे कर्म होंगे? मनुष्य यही सोचेगा कि देवताओं के कर्म श्रेष्ठ कर्म होंगे, लेकिन श्रेष्ठ से भी आगे एक नाम है, उनके कर्मों को अकर्म कहा जाता है। यानी वो प्रारब्ध पा रहे, भोग रहे हैं, वो कुछ ऐसे अच्छे कर्म नहीं करेंगे जिसका अच्छा फल मिले। पहले ही उनका फल अच्छा है, उनका भाग्य ही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए उनके कर्मों को अकर्म कहा जाता है। कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों में भी ये बात लिख दी गई कि देवता अपनी प्रारब्ध भोग कर नीचे उतर आए, दिखाया देवता असुरों की जेल में चले गए, असुरों ने उन पे विजय प्राप्त कर ली, उसका मतलब ही है उनकी प्रारब्ध पूरी हो गई। इस भाई को जगा दो, बेचारा सोता ही रहता है, सेकेंड लाइन आपके पास ही तो, जग जाओ जग जाओ जग जाओ, थोड़ा पानी पिया उठ के, अमृत बरसता है आप सो जाते हैं, मुझे होता है। ये बेचारा उड़ीसा जाके कहेगा, क्या कहेगा वो आप सोच लो, बड़ी शांति मिली क्लास में। तो हम सभी देवता थे, बहुत बड़ी प्रारब्ध मिली थी हमें, प्रारब्ध समझते हैं ना, कर्मों का सुंदर फल, उसको प्रारब्ध कहते हैं। दुनिया में हिंदी में प्रारब्ध अच्छे बुरे जो विफल मिल रहे हैं उसको लोग कह देते हैं, भाई कोई कष्ट पा रहा ये इसकी प्रारब्ध है। पर देवताओं की प्रारब्ध थी, उन्होंने देवता बनने से पहले इतने महान कर्म किए थे, भगवान को साथ दिया था, भगवान के कार्य पूरे किए थे कि वो देवता बन गए, प्योरिटी अपनाई थी तो देवता बन गए। तो कर्म थे अकर्म, गिरावट आ गई, भोग लिया सारा फल, पुण्य भोग लिए, अब द्वापर आ गया। सत्युग त्रेता में हम सब देवी देवता थे, आपको ये पक्का रहना चाहिए। भारत के इतिहास में सत्युग त्रेता का इतिहास नहीं लिखा है, पुराण थोड़े बहुत लिखे गए, उसमें थोड़ी बहुत चर्चाएं हैं, ज्यादा चर्चाएं नहीं है, राम की चर्चा है। लेकिन एक और लिखा है, आप सब अगर हिंदी उस तरह की पढ़ते हो, रामचरितमानस चलती है क्या आपके उड़िया में भी? चलती है। दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। राम राज में न दैविक न शारीरिक न सांसारिक कोई दुख नहीं था, वर्णन है वहां का। तो वह स्वर्ग था, थोड़ी थोड़ी चर्चाएं हैं, लेकिन थोड़ा दुख दिखा भी दिया राम को, थोड़ा तो दिखा दिया ना। सीता को बेचारी को दोबारा वनवास दिला दिया लोगों ने, थोड़ा थोड़ा दुख दिखा दिया। वो कहानियां हैं, कुछ सच्ची कुछ कहानी। तो द्वापर से मनुष्य देह अभिमान में आ गया और उससे पाप कर्म होने शुरू हुए। अब पाप कर्म किसे कहते हैं, थोड़ी सी परिभाषा सुन लें। देखिए, आपको यहां आत्मा का ज्ञान मिला है, हम आत्मा की स्मृति में रहते हैं, उसको कहते हैं आत्माभिमानी स्थिति। आत्मा को भूलकर हम अपने को देह मानते हैं तो उसे कहते हैं देह अभिमानी स्थिति। इस देह अभिमान से विकार आ जाते हैं आत्मा में, तो पांच विकारों के वश होकर जो कर्म किया जाता है उसे पाप कर्म कहते हैं। और आत्माभिमानी में होकर जो कर्म किए जाते हैं वो पुण्य कर्म कहलाते हैं, दिव्य कर्म भगवान के हैं, दिव्य और अलौकिक कर्म वो भगवान के कर्मों को कहा जाता है। अब आपसे हम एक लिस्ट बनवाएंगे, पाप कर्म कौन से हैं, पुण्य कौन से हैं, हाथ उठा के सुनाएंगे। पहले पापों की लिस्ट बनवा लें, वो ज्यादा हैं आजकल। बोलो, दूसरों को दुख देना पाप कर्म है। क्यों है ये पाप? अब गहराई से सोचेंगे, पाप तो है सब कहेंगे, लेकिन क्यों? हाँ वो तो है। अब और सुन लें, जो मनुष्य दूसरों को दुख देगा वो दुख पाएगा, जो कुछ हम देंगे वो डबल होकर हमारे पास आ जाएगा। आजकल देखो मानसिक रोग दुनिया में बढ़ रहे हैं, इसका एक प्रमुख कारण है कि मनुष्य अपने व्यवहार से, अपने बोल से दूसरों के दिमाग को कष्ट पहुंचाता है। एक है शारीरिक कष्ट होना, दूसरा है दिमाग को कष्ट देना, तो नींद ही नहीं आती लोगों को। तो जो ऐसा कर रहे हैं उनको भी नींद नहीं आएगी, रिटर्न हो जाएगा। मानसिक पीड़ा दूसरों को देते हैं तो वह आत्माएं मानसिक रोगों के शिकार हो जाते हैं, इसलिए ये बहुत बड़ा पाप है। और बोलो, दूसरा, चोरी करना पाप है, अब बड़ी चोरी तो आप क्या करेंगे, कौन कौन सी चोरी कर लेते हैं? नहीं, आप ही करते हैं, जरूरी नहीं। मनुष्य कौन सी चोरी कर लेता है? चलो एक सच्ची कहानी सुना देता हूं। एक बहन ने मुझे फोन किया, तब मैं फोन उठाता था, कम फोन आते थे मुझे, आजकल नहीं उठा पाता हूं। कहा, भाई जी एक गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? मैं गई थी बाजार में साड़ी लेने, एक साड़ी खरीदी, दूसरी उठा लाई। अब ताली क्यों बजाई भाई आपने, अच्छा काम थोड़ा ही किया। अब पति ने देख ली कि ये दूसरी साड़ी कहां से आई। अब उसने इस ढंग से व्यवहार किया कि मुझे बताना पड़ा कि ये तो मैं उठा लाई हूं। अब वो कहता है कि मेरे साथ चलो, उसको ये साड़ी वापस लौटाओ, उसे क्षमा मांगो, बताओ कि मैं चोरी करके ले गई थी। अरे आप तो मेरे को फोन किया, क्या करूं, समस्या हो गई है, इज्जत का सवाल है। मैंने उसे कहा कि ये बहुत अच्छा मौका है, इज्जत तो थोड़ी सी जाएगी पर चोरी का संस्कार सदा के लिए चला जाएगा। अच्छे घर की, कोई गरीब घर नहीं, पैसे वाले, और उसको चोरी का संस्कार। मैंने कहा और भी करती हो क्या? फिर बताने लगी मुझे, सच बता देते हैं, कुछ सामान लेने जाती हूँ ना कुछ उठा ही लाती हूँ, मेरे से रहा नहीं जाता, संस्कार हो गया है मेरा। तो मैंने कहा बहुत अच्छा मौका है इस संस्कार को सदा के लिए मिटा देने का। पति को कहो हाँ मैं चलती हूँ। पति साथ गया और साड़ी वापिस दी, दुकानदार से क्षमा मांगी, पति ने मांगी, और सदा के लिए वो संस्कार छूट गया। अरे भाई तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम एक के बजाय चार ले आओ ना, उठाने की क्या जरूरत थी, किसी गरीब को भी दिला दो, अच्छे पैसे वाले थे। तो चोरी करना भी महापाप में गिना जाता। और बोलो भाई लोग बताएंगे, किसी को डांटना ये क्यों पाप है भाई? टीचर कहेगा मुझे तो डांटना ही पड़ता है विद्यार्थियों को, माँ बाप भी कहेंगे बच्चों को थोड़ा तो डांटना ही पड़ता है। इसको दूसरे शब्दों में कह लो, मुख से कड़वे वचन बोलना। आंखों से, आंखें भी पाप कराती हैं। बुरा देखना, दैहिक दृष्टि रखना, बाबा के शब्दों में आंखों से दैहिक दृष्टि रखना, बाबा तो इसे बड़ा पाप कहते हैं, बड़ा पाप, छोटा नहीं। अब दिखाई देह देती है, इसका क्या अर्थ है? अब दिखाई तो शरीर ही देगा ना, आत्मा थोड़ा ही दिखती है। दैहिक दृष्टि रखना, दिखाई तो देह देगा, लेकिन बुरे विचार करना वो पाप हो जाता है। संकल्प जितने हम बुरे करेंगे, संकल्प जितने निगेटिव करेंगे, वो भी पाप के खाते में जाएगा, क्योंकि उससे मन की शक्तियां नष्ट होती हैं। पाप कर्म वो कर्म हैं जो मन की शक्तियों को नष्ट करते हैं, जो बुद्धि को दूषित करते हैं। कान क्या पाप करते हैं? हाँ बता रहे आप, ठीक बता रहे, लेकिन अंदर ही अंदर बोल रहे हैं। बुराई सुनना और कईयों में आदत ही होती है, बहुत बातें सुनना। माताएं ये काम ज्यादा करती हैं भाई लोग? सब करते हैं, भाई लोग करते हैं ज्यादा। जिनके पास टाइम बचता है ना घरों में, वो ज्यादा करते हैं। जो काम धंधे में बिजी रहते हैं वो थोड़ा बचे रहते हैं, माताएं बुरा न मानो तो एक बात सुना दो, काम काज हो गया, खाली हैं, अब पड़ोसन भी आ गई, कोई रिश्तेदार भी आ गई और कॉन्फ्रेंस चालू हो गई, और तुम्हारे घर में क्या हुआ, तुम्हारी बहू ने क्या किया, फलाने की बहू क्या करती है, उसका पति क्या करता है, सारा भेद खोल देती है माताएं। नहीं करते, जो नहीं करते वो तो देवियां हैं, जो करते हो वो देवियां बनने का पुरुषार्थ करना, ये एक दूसरे की बात पहुंचाना ये भी पाप में गिना जाएगा, क्योंकि जिसकी बात है जब वो सुनेगा तो उसको बड़ा कष्ट होगा। देखो एक हंसी की बात और सुना दूं, जब ये अखबार आदि नहीं होते थे, टीवी तो अभी आई है, फोन तो अभी अभी आया है, 20-25 साल हुए हैं, जब ये सब नहीं थे और मान लो कोई वैद्य किसी टाउन में गया है तो वो दो लोगों को बताता था कि मैं वैद्य हूं और इलाज करने आया हूं, एक कोई बहन जी और एक कोई बच्चा, सारे में फैला देते थे फटाफट, अगले दिन सबको पता होता था हमारे गांव में एक वैद्य जी आए हैं, वहां ठहरे हैं। ये हंसी की बात है, लेकिन अच्छी बातों को फैलाना पुण्य कर्म, इसलिए बाबा ने क्या किया, मात्र शक्ति को ज्ञान दे दिया कि बांटाओ, भाइयों को देता तो कहते किसी को नहीं बताएंगे, इतनी अच्छी बात, मात्र शक्ति को दे दिया कि सबको बांट दो और बांटने लगी आप सभी। तो कानों से बुराई सुनना ये भी पाप होता है, और बहुत लोग जो योग में शिकायत करते हैं, योग करते हैं तो व्यर्थ बहुत चलता है, उसका कारण व्यर्थ सुनना ही है। मैं तो कहा करता हूं, माताएं जब कहती हैं योग नहीं लगता, व्यर्थ बहुत चलता है, मैं उन्हें कहता हूं मेरे कहने से एक मास बस व्यर्थ की बातें सुनना छोड़ दो, देखो क्या होता है, आधा व्यर्थ पूरा आधा खत्म हो जाएगा, क्योंकि सुनने से उस पर चिंतन चलता है, उसका रिएक्शन होता है और वो चीज मन को विचलित करती है बहुत ज्यादा। और चलो पाप कर्म कौन से होते हैं, नहीं आप अकेली बोलो हाथ उठा के, कोई नहीं बोलेगा, भाई बहन जी बोल रही, बोलो, हाँ हायर से किसी बड़े से व्यर्थ सुनने को मिलता है तो हम क्या करें, अगर आप में पावर है तो उसे थोड़ा प्यार से समझा दो, ये तो बेकार है बहन जी, और अगर वो नहीं, आप वैसा नहीं कर सकते तो दूसरी विधि है स्वमान का अभ्यास करते हुए जो सुना जाए। हमारी दादी कहा करती थी, दो कान किस लिए मिले हैं, एक से बुरा सुन लिया तो इधर न जाने दो, इधर से ही बाहर निकाल दो, अर्थात उसका इफेक्ट न हो, सुना वो अंदर न समा जाए हमारे तो हम ठीक रहेंगे, नहीं तो व्यर्थ हमारे मन को बहुत भटकाएगा। बताओ और पाप कर्म, बुरी आदत, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, आजकल संसार में एक टेंडेंसी बहुत बढ़ गई है, अमेरिका आदि में तो बहुत, लेकिन भारत में बढ़ती जा रही है, सुसाइड करना, मर जाओ, जीव घात कर लेना, महा 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 पाप, क्योंकि इसके बाद वो आत्मा भटक जाती है, उसको पुनर्जन्म मिलता ही नहीं, वो दुखी भूखी प्यासी। इस जन्म और मृत्यु के बारे में आपको एक बात मालूम रहना चाहिए कि मनुष्य अंत में जिस मनोस्थिति से शरीर छोड़ता है वही बनी रहती है उसकी। अब सुसाइड करने वाला बहुत दुख की स्थिति में शरीर छोड़ता है तो लंबा काल दुखों में भटक जाता है। पाप कर्म। बोलो अभी और किसी को याद आया कुछ? हाँ, ईर्ष्या द्वेष, ये मनोविकार तो सारे ही पाप कराते हैं। लोभ तो बहुत पाप करा रहा है। धन के पीछे लोग एक दूसरे का मर्डर तक कर रहे हैं, अपनों का। और सोचो मनुष्य क्या क्या पाप कर रहा है आजकल। हाँ वो तो आ गया, चर्चा करना, चर्चा करना। खाने पीने में कौन सा पाप हो रहा है? ज्यादा खा लेते हैं? नहीं, नॉन वेज खाना है पाप या नहीं? आप में से जिसने खाया हो उतने ही पुण्य कर देना। कई लोग कहते हैं हम तो कोई पाप नहीं करते भाई जी। मैं पूछा करता हूँ नॉन वेज खाते हो? वो तो खाना ही पड़ता है। मैंने कहा तो कितने मुर्गों की गर्दन मरोड़ी है आपने, ये बताओ पहले। कहा हम थोड़ा ही मरोड़ते, हम तो वहां से लाते हैं, तो तुम्हारे कारण उन्होंने तो मरोड़ी है। अब मुर्गा दुखी हुआ होगा या नहीं, या सुखी हो रहा होगा मैं मर रहा हूं? महापाप आजकल ट्रेंड बन गया है, लोग सभी नॉन वेज खा रहे हैं। और जो अपने को रॉयल समझते हैं ना, पैसे वाले हैं, रॉयल हैं, वो नॉन वेज खा, यही तो रॉयल्टी है। लेकिन इसका रिटर्न होता ही है, इसीलिए दुख बढ़ रहे हैं। इसलिए मनुष्यों की बुद्धि तामसिक होती जा रही है, वो पाप कर्मों की ओर बढ़ रहे हैं। इससे भी बचना है। जो भी खाते हो यहां से संकल्प करो, हमें मनुष्य से देवता बनना है, इसलिए ये हमारा भोजन नहीं है। बाबा ने तो कह दिया था ये राक्षसी भोजन है, ये असुरों का भोजन है। ये शब्द याद रखना, भगवान के शब्द, किसी मनुष्य के नहीं है। जब भी खाओ याद करना असुरों का भोजन खा रहे हैं। कई जगह तो प्रथा है, 6 मास का बच्चा हुआ उसे वही पिलाएंगे, जैसे सूप पिलाते हैं ना। एक लड़की ज्ञान लिया उसने, एक छोटी माता, 6 मास का बच्चा हुआ, उसकी सास कहे हमें तो यही खिलाना है इसको। अब बहुत मना किया लेकिन मुंह खुलवा के डाल ही दिया, बच्ची ने जितना डाला था उससे डबल उल्टी कर दी। हमें कहा नहीं था ये स्वीकार नहीं करेगी आत्मा इस गंदे भोजन को। तो ये भी महापाप कलयुग के अंत में बढ़ता ही जाता है। अब देखो क्या हो रहा है संसार में, जितना पाप मनुष्य ने जन्म जन्म किया। अभी गहरी बातों पर आ जाओ, पाप की लिस्ट तो बहुत लंबी है। बाबा जब यहाँ थे तो बनवाया करते थे लिस्ट, बनाओ 108, 108 तरह के दुख, 108 तरह के पाप। हम सब छोटे थे, लग जाते थे लिस्ट बनाने में, तो निकल जाते थे बहुत सारे, 50 तो निकाल ही लेते थे, बाकी आपस में चर्चा करके निकालते थे। तो ये पाप संग्रह होता जाता है, संग्रहित, ये इकट्ठा होता जाता है। ये नहीं पाप कर लिया छूट गए, वो कलेक्ट होता जाता है, एक्यूमुलेट होता जाता है, वो सामने आता है मनुष्य के बीमारी के रूप में, समस्याओं के रूप में। किसी को शरीर कैसा मिल रहा है, किसी को शरीर कैसा मिल रहा है। आप सबको एक नई समस्या का ज्ञान हो, जो डॉक्टर्स बैठे उनके पास केस आने लगे होंगे, बहुत केस बढ़ गए हैं। मैं पीछे सूरत में गया, हमारे यहाँ आने वाले 2 डॉक्टर ने बताया इमैच्योर डिलीवरी, 7 मास में ही बच्चों का जन्म, ये केस बहुत बढ़ गए हैं। तो कहा, एक ने कहा मेरे हॉस्पिटल में 40 बॉक्स बना के रखे, उनमें बच्चों को रखा गया ताकि जो 2 मास की कमी रह गई वो कवर हो जाए। एक ने कहा मेरे हॉस्पिटल में 70 बॉक्स बना के रखे हुए हैं, उनमें वही टेम्परेचर वही सब कुछ क्रिएट किया गया जो गर्भ में होता है, ताकि उनके ब्रेन का, हार्ट का, किडनी का विकास हो जाए, पूरी हो जाए, नहीं तो कमजोर रह जाते और जीवन भर उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ता है। तो ये नई समस्या संसार में बढ़ती जा रही है। एक साल से ही, उससे पहले ज्यादा नहीं थी, उससे पहले कहीं कहीं होते थे, अब ये बहुत होने लगी। ये मनुष्य के कर्मों का फल है। अब याद रखेंगे आप सभी, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं, बोलो, खुद हूं, कोई दूसरा नहीं। मेरे पास बहुत छोटी बहनें आती हैं, हमें ऐसा पति मिला है, तंग करता है, शराब पी के आता है घर में, बुरा बोलता है, लड़ाई झगड़ा करता है, कौन दोषी? हम अपने कर्मों को सुधारें तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। जो कुछ हो रहा है वो हमारे कर्मों की परछाई है। बिना कर्म के किसी के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। हम पुण्य आत्मा बने और पुण्यों का खाता बढ़ाएं। आज से हमारे यहाँ तो आज जो बाबा के महावाक्य हमने सुने वो स्वमान पर थे बहुत ज्यादा। स्वमान आप सीखते जाएंगे धीरे धीरे। मैं आपको एक स्वमान, स्वमान माना हायर कॉन्शियसनेस, मैं आपको एक स्वमान दे रहा हूं जिसकी प्रैक्टिस आप करना। मैं पुण्य आत्मा हूं। तो आप इस छोटे भी जो पाप कर रहे हैं उनसे हम बचे रहेंगे। मैं अपने घर की इष्ट देवी हूं। माताएं सभी पक्का कर लें, आप नारी नहीं, आप चार बच्चों की मां नहीं केवल, मैं अपने घर की इष्ट देवी हूं, तो आप देवी बन जाएंगे। और मैं पुण्य आत्मा हूं, इसको बहुत बढ़ा देंगे आप दोनों स्वमान को, तो हमारे कर्म श्रेष्ठ होते जाएंगे। और फिर ये श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म, हमें मनुष्य से देवता बनाएंगे। अब सबको मालूम रहे, जो संसार में कहावत है, प्रचलित है वो बात, पाप की गठरी शीश पर। सुनिए, आपके उड़िया में भी कुछ लैंग्वेज होगी, पाप बहुत सिर पर है, हर मनुष्य के सिर पर पाप ही पाप है आजकल, उसे कैसे उतारा जाए, बोलो बोलो, कैसे उतारा जाए? ठीक बोल रहे, राजयोग एक अग्नि है जो पाप कर्मों को जलाकर नष्ट कर देती है। आज भी सवेरे हमने अभ्यास कराया था, शिव बाबा सर्वशक्तिवान है, उसके पास जाकर बैठेंगे, मन बुद्धि से अभ्यास करना, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना, एक मिनट से शुरू करना, 10 मिनट तक ले जाना। मैं आत्मा परम धाम में शिव बाबा के पास बैठी हूं। अब जैसे हम चार्ज होने के लिए ऊपर पहुंच गए हैं, वो सर्वशक्तिवान है, उसकी शक्तियों की लाल किरणें मुझ में समा रही है, और ये लाल किरणें अग्नि का काम करती हैं, जो पाप कर्मों को जलाकर नष्ट कर देती हैं। इसलिए इसको योग अग्नि कहा जाता है। तो योग अग्नि में अपने पाप कर्मों को जलाएंगे, ये काम सबको करना है। कर्म का फल तो मिलना ही है, या तो योग अग्नि में उसको जला दो, नहीं तो हर कर्म आपको फल देगा, बुरे का बुरा, अच्छे का अच्छा। तो ये योग बल है, ये योग अग्नि है, ये योग सुख शांति देने वाला भी है, ये योग आत्मा को पावन भी बनाने वाला है। तो हम अपने पाप कर्मों को इस योग अग्नि में जलाएंगे। जैसे होली जलाते हैं ना, वो स्थूल चीज है। अब हम ऊपर बैठेंगे, क्लियर है ना ये बात? परम धाम में बैठी हूं मैं आत्मा। पहले कुछ समय ये अभ्यास करना, 10 सेकंड भी, मैं आत्मा परम धाम में बैठी हूं, वो शांति धाम है, वहां की शांति मुझ में समाने लगी है, मेरा मन शांत होने लगा। आधा मिनट, फिर 1 मिनट, मैं आत्मा परम धाम में बैठी हूं, ऊपर है शिव बाबा, उसकी किरणें बढ़ रही हैं। ये सिंपल अभ्यास, लेकिन इसमें आवश्यकता होगी अभ्यास की, प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के ये कठिन हो जाएगा। और जो अब हमने चर्चा की, पाप कर्म यदि ज्यादा होंगे तो भी मन एकाग्र नहीं होगा। पाप कर्मों से बचना होगा। मन यदि व्यर्थ में रहेगा तो भी हम परम धाम में बैठ ही नहीं सकेंगे, 1 सेकंड भी सोचेंगे और नीचे मन भटकता रहेगा। इसलिए जो पुण्य आत्माएं होंगी वही अच्छे योग का अभ्यास कर पाएंगी, श्रेष्ठ योगी बन जाएंगी, और उनके ही ये पाप कर्म इस योग अग्नि में भस्म होंगे। तो आगे के लिए सोच लेना है, मुझे ये पाप नहीं करने हैं। छोटे छोटे पाप हैं, सूक्ष्म पाप कहते हैं इन्हें, जिनकी हमने थोड़ी थोड़ी चर्चा की। ये जब बहुत होने लगते हैं तो मन पाप से भारी होने लगता है। मन जो पाप है ये मन पे दबाव बनाने लगता है, इससे समस्याएं पैदा होती हैं, इससे बीमारियां बहुत पैदा हो रही हैं। आजकल जो मैंने कहा भी आपको, आजकल जो मानसिक रोग पैदा हो रहे हैं, हम उसमें एक छोटी सी प्रयोग कराते हैं, आप भी कर लेना। छोटा सा प्रयोग है वो, क्योंकि ये कर्मों का इफेक्ट है। मानसिक रोग माना अति कर्मों का इफेक्ट, पाप कर्मों का। रात को नींद न आना माना पाप का बोझ बहुत भारी है। डिप्रेशन होना, एंग्जाइटी, सिजोफीनिया, जो ये नाम है, ये मतलब मानसिक रोग, ये अति पाप कर्मों का परिणाम है। तो इसमें एक छोटा सा प्रयोग है, वो आप सभी अब करेंगे और हम क्लास समाप्त करेंगे। क्षमा याचना, जिनको हमने हजारों साल में कष्ट दिया हो उनसे मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं, क्षमा चाहती हूं। आप प्रसन्न हो जाएं, आप सुखी रहें, उन्हें दुआएं दे दो, आप सुखी रहें, आप प्रसन्न हो। तो जो बैड एनर्जी आ रही है वो कट कट जाएगी। आपको याद रहे, मान लो अब से 1000 साल पहले आप पुरी के राजा थे और आपने कोई गलत निर्णय ले दिया था, अहंकार वश कहीं लड़ाई छेड़ दी थी, उसमें हजारों लोग मर गए, सब कहते थे कैसा पापी राजा आया है, बिना मतलब हजारों को विधवा बना दिया इसने, तो उसकी वो बद्दुआएं, लोगों की वो बद्दुआएं अब तक भी आपका पीछा कर रही हैं, वो खत्म नहीं हुई। क्षमा याचना करने से वो कट जाएंगी, और जब बद्दुआओं की तरंगें आपका पीछा कर रही हैं वो कटने लगेंगी। इसलिए सभी भाई बहने जो यहां बैठे हैं, 21 दिन तक, कम से कम 11 दिन तक रोज सवेरे उठ के ये क्षमा याचना अवश्य कर लेना। समझ गए ना क्षमा याचना? मैंने हजारों साल में जिनको भी कष्ट दिया हो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। आप शांत हो जाएं, सुखी हो जाएं, प्रसन्न हो, बैड एनर्जी आना बंद हो जाएगी। अनेक तरह के सुंदर अनुभव आपको होंगे। जो बीमारी ठीक नहीं हो रही वो ठीक हो जाएंगी। इसके एक एग्जाम्पल दे के मैं समाप्त करूंगा। जोधपुर में एक बहुत बड़ा डॉक्टर बहुत बीमार हुआ, जयपुर भेज दिया गया, बहुत बीमार और मृत्यु की ओर गया। उसके परिवार वाले हमारे सेंटर पे आए और कहा बाबा को भोग लगाओ, संदेश मंगाओ। संदेश आया कि ये जो डॉक्टर है ये पिछले जन्म में राजकुमार था, बगीचे में बैठा था, एक ब्राह्मण आ गया, दोनों की बातचीत होने लगी, बातचीत विवाद में बढ़ गई, विवाद झगड़े में बदल गया। इस राजकुमार ने उस ब्राह्मण को तलवार से मार दिया, उसका श्राप इसको जीने नहीं दे रहा है, क्या करें? उससे क्षमा याचना करो। और ये जो डॉक्टर था इसको, ये बिल्कुल मृत्यु के समीप पहुंच गया था, अर्ध चेतना में इसको फील हुआ ये सच है, उसने वहीं हाथ जोड़े, सबने देखा, ब्राह्मण देवता मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मुझे क्रोध आया, मुझे अभिमान था, मैंने आपकी हत्या की, आप मुझे क्षमा करें। और वहां से उसने दिन में कई कई बार क्षमा याचना शुरू की और ठीक होने लगा, 15 दिन में ठीक होके घर आ गया। वही दवाई जो काम नहीं कर रही थी काम करने लगी। ये बड़ी गुह्य गति है कर्मों की। दवाइयां ठीक होती हैं, लोग डॉक्टरों को दोष देते हैं, पर दोष है पाप कर्मों का। इसलिए याद रखेंगे, सभी पुण्य आत्माएं हैं, भगवान के बच्चे, पुण्य आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, सुख देने वाली आत्माएं। आज से संकल्प कर लें यहां, अब मुझे सबको सुख देना है। बोल से, व्यवहार से, अपने कर्मों से दूसरों को सुख देना है, ताकि दूसरों के मन से मेरे लिए दुआएं निकलें। बद दुआएं बहुत खतरनाक होती हैं, जो मनुष्य को आज जीने नहीं दे रही हैं। हम सबको सुख देंगे, पसंद है? सबको सुख देंगे, क्योंकि हम देवता थे, हम देव कुल के हैं, हम महान हैं। ऐसा संकल्प कर लो, हम आम लोगों जैसे नहीं हैं, हम दूसरों को देखकर फॉलो नहीं करेंगे, हम इतने अच्छे कर्म करेंगे हमें सब फॉलो करें। ओम शांति। अब योग करेंगे और ऐसा ही अभ्यास करेंगे, सर्वशक्तिवान से लाल किरणें आ रही हैं और पाप कर्मों को जला रही हैं।